Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerfil enbiya'i vel mursalin. Habibi kulubina ve tabibi nüfusina abil kasimi Muhammed. Allahu salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Vessalatu vesselamu ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, masumin, mazlumin. Ve la'natullahi ala adaihim ecma'in. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to obey him and to live a life of piety and obedience. Allah subhanahu wa ta'ala se dua karte hain ke wo hame ye taufeeq de ke ye jo aaj se hum dars shuru kar rahe hain khuda usko hame پورا کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو کتاب ہے وہ گناہان کبیرہ آیت اللہ محمد عبد الحسین دس غیب شرازی رحمت اللہ علیہ. ان بزرگوار کی بہت ساری خدمات ہیں, ان خدمات میں سے یہ کتاب ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. شہید کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. آج سوچا یہ ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں, اور اگر جانی ساری آوازیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ میں جا رہی ہیں, ہمارے جو بھی بھائی سن رہے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہوتی. شہید کی جو زندگی تھی اس کے اندر انہوں نے بہت ساری زحمات اٹھائیں, بہت ساری مشکلات کو دیکھا. ان کو کئی دفعہ جیل میں رکھا گیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ ان کے نائب تھے شراز کے اندر, اور مجلس کے اندر بھی ان کی ایک پوزیشن تھی. اور ان کو جب وہ مسجد میں نماز کے لیے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تھے تو ایک بوم سے جو ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. آغا نے اپنی جو زندگی گزاری ہے اس کو واقعاً ایک الگو ہے, ایک نمونہ ہمارے لیے, اگر ہم ان کی زندگی سے کوئی درس حاصل کر سکیں اور ان کے نقش قدم پہ چل سکیں تو ہماری اپنی ایک بہت بڑی سعادت ہوگی. ان کے خانوادے کے حوالے سے یہ ہے کہ 800 سال کی ایک تاریخ ہے جو کہ ان کے خانوادے نے اسلام کی خدمت کی, اور ان کو جس طرح سے ماحول ملا اس کے اندر انہوں نے ایک پاک اور پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزاری. اور ان کے حوالے سے, ان کے حالات زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کتابوں میں درج ہیں, اور اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں. لیکن 12 سال کی عمر میں وہ یتیم ہو گئے تھے, ان کے ابو فوت ہو گئے تھے, اور اس کے بعد سے جو ہے وہ آغا نے اپنی جب اسٹڈیز کو جو ہے وہ کافی چھوٹی عمر میں شروع کر دیا تھا اور اجتہاد کو حاصل کیا. اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی زحمات تھی وہ انقلاب کے حوالے سے وہ ایک مقدمہ تھا جو کہ انہوں نے, یعنی بہت کم علماء آپ کو نظر آئیں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کوششوں سے پہلے انہوں نے کوششوں کو شروع کیا ہو. اور آیت اللہ شہید عبد الحسین دست غیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی اسٹڈیز کو شروع کیا اور مقام کو حاصل کیا تو مساجد کے اندر جس بھی مسجد میں گئے انہوں نے طاغوت کے حوالے سے آواز کو بلند کیا اور لوگوں کو جمع کیا. ان کو کافی دفعہ جیل میں بھی رکھا گیا, گھر میں بھی بند کیا گیا. ان کی यानी उनको अतः ये भी कहा गया कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आप यानी 24 घंटों के अंदर अपनी अबा खबा को जो है वो उतार दें, तो आगा ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो नजफ चले गए और वहाँ पे कुछ अर्सा उन्होंने गुजारा। जहाँ तक उनकी शख्सियत का पहलू है तो वो जाहिर है कि हम उसके तमाम पहलुओं को नहीं देख सकते, लेकिन ये शहादत के पहलू को अगर देखा जाए तो उनकी खानम से मनकूल है कि उन्होंने कहा कि जुमा के रोज़ उनको शहीद किया गया और शब जुमा जो है वो कहते हैं कि उनकी हालत काफ़ी इज़्तिराब में थी और एक अजीब सा उनके चेहरे के ऊपर कश्मकश सी थी, इज़्तिराब था और बेचैन थे, और खानम कहती हैं कि हमने कभी उनको इस तरह से देखा नहीं था। तो जब उनसे पूछा कि भई आप क्यों इतने मुस्तरब हैं, क्या बात है, क्यों इस तरह से हैं, तो आगा ने कहा कि सुबह जब होगी तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। और सुबह हुई और आगा यानी जुमा के वक्त जब वो नमाज पढ़ा रहे थे तो बम के साथ उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जब वो इस दुनिया से चले गए तो वो ख्वाब में आए एक खातून के और उनको बताया कि मैं आलम बरज़ख के अंदर थोड़ा मुस्तरब हूँ क्योंकि हमारी कब्र के अंदर हमारे सारे जो जिस्म के हिस्से हैं वो डले नहीं हैं, और जहाँ पे बम फटा था वहाँ पे हमारे कुछ जिस्म के हिस्से अभी भी पड़े हैं। तो उस खातून ने जो है वो उनके खानवादे से रابطہ किया और उनको अपने ख्वाब के बारे में बताया। तो उन्होंने जब वाकई उस जगह पे जाके देखा तो आगा के कुछ गोश्त के टुकड़े जो थे अभी भी उधर बिखरे हुए थे, तो जिनको के उन्होंने कलेक्ट करके तो उनकी कब्र में डाला। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनके आसार को जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 1984 में उनकी शहादत हुई है, और ऐसा नहीं है कि इस शख्सियत के बारे में कहा जाए कि बहुत कदीम उलमा में से हैं, ये हमारे हम असर में। तो आगा के हवाले से बहुत सारी और भी बातें हैं, किस्से हैं उनके हवाले से, लेकिन हम इक्तफा करते हैं इसी पे और एक उनके एक जुमले के हवाले से इसको इस दर्स को जो है वो शुरू करते हैं। उनका एक जुमला जो कि किताब के शुरू में है वो कहते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं वो तीरों की तरह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दिल पे लगते हैं, और जब वो हमारे नामे अमाल को देखते हैं तो वो उसको देख के रोते हैं। तो उन्होंने इस किताब को जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए डेडिकेट किया है, और ये जुमला उनका मुझे बहुत पसंद आया और उसके बारे में कुछ सोचा भी। यानी हम इमाम के दिल को मजरू करते हैं और दोबारा सोचते भी नहीं है कि हमने उनको कितनी तकलीफ पहुंचाई। जब भी आप गुनाह करें तो इस बात को ज़ेरे नज़र रखिएगा कि आपने एक तीर फेंका है इमाम के दिल के लिए और उनका दिल नाराहत हुआ है। अगर कोई शख्स इसी का तहिया कर ले कि मैं आज से अपने इमाम के दिल पे तीर नहीं बरसाऊंगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी। हमें दरअसल हकीकत में अंदाज़ा नहीं होता हमारे गुनाह कितने ज़िश्त हैं और कितने ख़राब हैं। और जब इस जुमले को मैंने पढ़ा था तो यानी जो ज़हन में सोचा है कि आइंदा से हम जो इमाम से प्यार करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें प्यार है, आइंदा से कोई तीर उनके दिल पे नहीं जाएगा, और अगर कोई इंसान इस बात का तहिया कर ले कि उनके दिल पर कोई तीर नहीं लगेगा, उसके जहन में अगर ये ख्याल भी आता है कि उसने खुदा के लिए इस मासियत को नहीं रोका صرف اگر امام کے پیار ہی کے حوالے سے وہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہر گناہ اس کا ایک تیر ہے امام کے دل پر, تو وہ اپنے آپ کو کافی بلند کر سکتا ہے, اور اس معاملے کے اندر شاید وہ زیادہ اسٹرانگ فیل کرے. جیسے کہ کہا جائے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرو, اور اس کی جو موٹیویشن کا لیول ہے وہ تھوڑا ایک کم ہو, لیکن اگر اسی بات کا تہیہ کر لے کہ جب بھی وہ گناہ کر رہا ہے امام کے دل پہ ایک تیر جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دے. اور امام اجمعان علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے جو ہمیں پتہ ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے, اور خدا نے ان کو لے کے بھی, خدا ان کو اسی لیے آیا تھا کہ وہ وسیلہ بنے کہ لوگ خدا تک پہنچ سکیں. تو اگر کوئی اس بات کا تہیہ کر کے بھی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہر گناہ ایک تیر ہے جو امام کے دل پہ لگتا ہے, تو اس نے کوئی کام خدا کی رضا کے علاوہ نہیں کیا, کہ ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے بغیر ائمہ علیہ السلام کے, اولیاء اللہ کے, ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اور جو کوئی بھی خدا تک پہنچا وہ کسی نہ کسی وسیلے سے پہنچا. تو اگر آپ اس وسیلے ہی کی وجہ سے اس کا خیال رکھتے ہوئے خدا کی نافرمانی نہ کریں, تو وہ عین عبادت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے کہنے سے کوئی انسان نمازیں شروع کر دے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نمازیں اشکال میں آ جائیں یا اس کی نیت اشکال میں آ جائے, یا اگر کوئی قرآن پڑھنے لگ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا قرآن پڑھنا آپ کے لیے, بلکہ وہ عین خدا کے لیے. خدا کیونکہ ہمیں وسیلوں ہی کی طرف سے سارا کچھ دیتا ہے, تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ سب جو بھی سن رہا ہے یا سنے گا, اگر اس بات کا تہیہ کر لے کہ آئندہ سے امام کے دل پہ تیر نہیں جائے گا, تو اپنے آپ کو کافی, یعنی یہ اس چیز کو پائے گا کہ اس کے اندر جو موٹیویشن ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی, اب اپنے مراقبے میں بھی اور محاسبے کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھے گا, تو اس کو اس بات سے قوت ملے گی. کیونکہ ہمیں جہاں تک بھی ہے بالآخر امام سے ایک پیار ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے, اور ہمارے لیے ان کی ساری جو کوششیں ہیں ابھی بھی جو جاری ہیں وہ کوششیں ان کی ہماری حوالے سے ہیں کہ ہم کسی ایک حد تک پہنچ جائیں, کہ ہم لیاقت پا لیں کہ وہ آ جائیں. تو اپنی زندگی کو اگر ہم اس بات کا تہیہ کر کے گزارتے ہیں کہ بھئی جب امام آئیں گے تو ہم اپنے سینے کو ان کے, یعنی اگر کوئی تیر یا گولی ان کی طرف آ رہی ہے تو اپنے سینے کو دے دیں گے, یا یہ ہے کہ ہم امام حسین کے لیے زیارت عاشورہ میں یا باقی زیارات کے اندر یا زیارت وارثہ کے اندر یا باقی کے دعاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ یا امام ہم کاش کہ ہم آپ کے پاس ہوتے کربلا, کاش کہ ہم ادھر ہوتے اور ہم آپ کی مدد کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ فلاح پا جاتے جیسے کہ آپ نے فلاح پائی. تو اگر مقصد ہمارا یہی ہے کہ امام کی کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو جو تیر امام کی طرف آ رہے ہوتے ان کو ہم روک لیتے, ہمارا مقصد یہی ہے کہنے کا امام حسین کا, تو ابھی آپ کے پاس یہ کام ہے آپ کر سکتے, بجائے اس کے کہ ہم امام کی حفاظت کریں ہم امام کو تیر مار رہے. یعنی ہم ان لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ علیہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اتباع کی دوسرے لوگوں کی اور اپنے ذہنوں کو معوف کر دیا, اور جو بات ان کو کہی گئی اس کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ نواز رسول کا گلا کاٹ کے نیزے پہ لیا. ہم لوگوں سے نفرت کرتے, ان پر لعنت بھیجتے, لیکن ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ ہم اپنے امام کے دل پہ خود تیر برساتے اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اللہ جل اللہ جل اللہ جل ہم آپ سے پیار کرتے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہمارا, یعنی یہ کوئی حال نہیں ہے, یہ کوئی زندگی کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے. اور بے شمار جو ہے وہ احادیث سن لی, بے شمار درس سن لیے, بے شمار جو ہے وہ کتابیں پڑھ لی, بے شمار جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار لیا ممبر کے نیچے بیٹھ لیا, और क्या कुछ नहीं जो है वो हमने हासिल करने की कोशिश कर ली। लेकिन अभी तक अगर इमाम के दिल पे हम तीर बरसाने नहीं रुके तो पता नहीं अब हमारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह सुब्हान तआला से कि ये जो अभी शुरू किया है इसको खुदा हमें तौफीक दे कि हम इसको इखलास के साथ, खलूस के साथ और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में लेकर आए इस दर्श को। जामे सआदत हमने पढ़ ली, जेल हदीस हमने उसको पढ़ लिया, जो हो सकता था वो बिलाखिर कम पेश जो भी था वो कर लिया, लेकिन अभी तक हम गुनाह करने नहीं रुके। गुनाहों पे गुनाह, हर रोज़ हर जुमले में गुनाह, हर हरकत में गुनाह, यानी गुनाह कर कर के हमारी ज़िंदगी गुजर गई। तो ये सब कुछ जो है उसका क्या फ़ायदा है बिलाख़िर? तो यह है कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि इन दुरूस को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। 50 से ऊपर चैप्टर्स हैं इस किताब के और हर चैप्टर जो है वो अच्छा बड़ा चैप्टर है। उसमें आगा ने बहुत सारी अहदीस जो हैं वो ज़िक्र की हैं और हर हदीस जो है उसकी तशरीह काफ़ी, अगर आप चाहें तो लंबी चौड़ी कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने एज अ दर्स जो है वो कि आप उठें बैठें और चाय पी के खाना खा के चले जाएं, इस तरह से नहीं करना। जो जो बात कही जाए उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। जो दूसरा ये कि इंशाल्लाह किताब भी आपके लिए आ जाएगी, अगर आप इंग्लिश में चाहें तो अल इस्लाम के ऊपर alislam.org पे पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते। उर्दू के अंदर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पास किताब आ जाए। और जो कोई इंटरनेट पे सुन रहा है वो अपने कंप्यूटर में अगर इंग्लिश की वो चाहे तो साथ साथ किताब को रख सकता है दर्श के साथ साथ। तो ये है बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बिलाखिर एक जगह तक पहुंचने से रोक देती हैं। और क्योंकि हम कहते हैं कि वो छोटी छोटी बातें हैं इसलिए हमें वो बातें बड़ी नहीं लगती। और शहीद ने जो है वो जिस तरह से किताब के अंदर डिस्क्राइब किया है, तो गुनाह ने कबीरा नाम है लेकिन हर गुनाह कबीर है, वो सगीर नहीं है। हम ये जो गुनाह ने कबीरा और सगीरा कहते हैं, गुनाह ने कबीरा को उस तरह से ले लेते हैं कि अभी जिसकी अजाब का जो है खुदा ने कहा है कुरान के अंदर वो गुनाह कबीरा, जिसका कि नहीं का वो गुनाह सगीरा। हकीकत में इस तरह से गुनाह को नहीं देख सकते आप। गुनाह को अगर देखना है तो आप ये देखें कि आपने नाफरमानी किसकी की है। गुनाह को उस लिहाज से ना देखें कि ये छोटा है या बड़ा है, बल्कि ये देखें कि आपने नाफरमानी किसकी की है। मसलन इंसान किसी की ताज़ीम करता है, इज्जत करता है, उसके सामने मसलन अगर वो अच्छी तरह से ना भी बैठा हो तो वो अपने आप को समझता है कि उसने कोई काम गलत किया। और अगर जिसकी की ताज़ीम और इज्जत नहीं करता उसके सामने वो जिस तरह से मर्जी चाहे बैठ जाए तो उसको इतना एहसास भी नहीं होता कि उसने काम ख़राब किया। जब इंसान गुनाह करता है तो उसने गुनाह नाफरमानी किसकी की है? तो उसने जिसकी नाफरमानी की है वो खुदा है, और खुदा की नाफरमानी छोटी हो या बड़ी हो उसकी स्केल के अंदर वो जिस हस्ती की उसने नाफरमानी की है उस बिना पे वो गुनाह जो है वो बड़ा हो जाता है। तो जो पहला चैप्टर इंग्लिश की किताब के हवाले से है वो तकवा की हकीकत के ऊपर है। तकवा के बारे में हम बात कर चुके हैं। तकवा को आपको कहा है कि कुव्वत का नाम है जो इंसान के अंदर होती है, जिस कुव्वत से वो खुदा की इताअत करता है और अपने नफ्स अमारा की और शैतान की नाफरमानी करता है। जब हम कुव्वत का नाम लेते हैं तो उसके साथ साथ आपके जहन में ये बात आएगी कि अगर हम अभी तक गुनाहों को तर्क नहीं कर सके, अगर अभी भी हम शैतान की फरमा बरदारी करते हैं और अपने नफ्स अमारा की, तो इसका मतलब है कि हमारी कुव्वत कम है। सही? मतलब अगर कोई शख्स खुदा की इताअत नहीं करता तो आप उसको कह सकते हैं कि इसके अंदर तकवा कम है। अगर तकवा ज्यादा होता तो ये खुदा की इताअत करता। उसके दूसरे लफ्ज में आप ये कह रहे हैं कि इस शख्स के अंदर जो है वो इतनी कुव्वत नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर कुव्वत इतनी नहीं है तो दूसरी साइड पे जो काम उससे करवा रही है, जो शैतान की नाफरमानी करवा रही है या नफ्स-ए-अमारा की इताअत करवा रही है या शैतान की इताअत करवा रही है, तो फिर वो कुव्वत जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप कुव्वत के हवाले से तकवा को समझना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान के अंदर फिर वो, उसके अंदर दो किस्म की कुव्वतें। जब आप देखते हैं कि दो लड़ रहे हैं शख्स, तो उसमें से जो ज्यादा कुदरतमंद होता है वो दूसरे को हरा देता है। अगर दोनों एक जैसे हों तो वो एक दूसरे को नहीं हरा सकते। तो जिस शख्स के अंदर तकवा कमजोर है उस शख्स के अंदर नफ्स-ए-अम्मारा या उसकी शहवत या उसकी हवा स्ट्रांग है, क्योंकि जब उसकी हवा स्ट्रांग है, उसके नफ्स-ए-अम्मारा स्ट्रांग है, तो वो उसकी दूसरी साइड को जो है वो हरा देता है। अगर उसकी दूसरी साइड स्ट्रांग ना होती तो अगर उसका तकवा कम भी होता तो वो फिर भी खुदा की इताअत करता। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जब हम कुव्वत की बात करते हैं कि आप कहें कि जी हमारे अंदर कोई कुव्वत नहीं, नहीं आपके अंदर कुव्वत है, लेकिन वो कुव्वत जो खुदा की इताअत और फरमाबरदारी करवाती है जिसको कि तकवा कहा जाता है वो कमज़ोर है, और जो शैतान की इताअत और उसकी फरमाबरदारी करती है वो स्ट्रांग है। तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि वो कुदरतमंद नहीं है, वो कुदरतमंद है लेकिन किस किस्म की कुव्वत उसके अंदर ज्यादा है। अगर खुदा की अताअत करने की कुव्वत ज्यादा है तो इसका मतलब उसका तकवा ज्यादा है, और अगर उसके पास अपनी शहावतों की उसके ऊपर अमल करने की है तो उसका इसका मतलब है कि उसकी कुदरत ज्यादा है, और वो पता लग जाता है। जो खुदा की नाफरमानी करता है इसका मतलब है उसकी कुव्वत शाविया जो है शहावतों के ऊपर अमल करने की कुव्वत स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग ना होती तो वो खुदा की इताअत करता। तो दर हकीकत में हम इस कुव्वतों को पालते हैं। अगर कोई 40 साल का हो गया है तो उसने अगर दूसरी कुव्वत को पाला है तो उसके अंदर वो कहरमान है, उसके अंदर वो बहुत बड़ा कुदरतमंद पहलवान है, और अगर किसी ने दूसरी कुव्वत को पाला है, तकवा को पाला है, तो वो 40 साल की उम्र में वो फिर एक बहुत बड़ा कहरमान है। तो इस लिहाज से हम कोई ना कोई पहलवान है, किसी न किसी कुदरत जो है हमारे अंदर स्ट्रांग है। तो अगर आप समझते हैं कि आप खुदा की इताअत जो है वो नहीं कर पाते और गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरी तरफ से स्ट्रांग हैं। तो आपको दूसरी तरफ को वीक करना है और तकवा को बढ़ाना है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरी तरफ को भी खिलाते पिलाते रहें और साथ में समझें कि मैं तकवे को भी बढ़ाऊंगा, नहीं। उसमें से एक को कमजोर करना, दूसरे को कवी करना, ताकि वो जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सके। तो अगर शहावतें ज्यादा हैं तो जिस जिस शहावत के ऊपर ज्यादा है तो उसको कमजोर करें। यानी जिस तरह से मसलन अगर कोई इंसान खाने के हवाले से बहुत ज्यादा खाता है तो उसका हल यही है कि वो खाना कम करता है। सोने के हवाले से बहुत ज्यादा सोता है तो उसका हल यही है कि सोना कम करता है। यानी जानवर समझें आप अपने शहवत को, अपने नफ्स को एक जानवर समझे। अब आप जिस जानवर को जितना ज्यादा खिला रहे हैं, जितना ज्यादा पाल रहे हैं, जाहिर है वो उतना ज्यादा ताकतवर हो, और अगर तकवा के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे, उस कुव्वत को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो फिर वो जो आपने नफ्स पाला हुआ है वो जाहिर है कि उसको शिकस्त दे देगा। तो दरहकीकत में तकवा जो है वो अगर आप इसी कुव्वत के हवाले से देखें तो ये बात अगर जहन में आ जाए कि हम ये नहीं कि वीक है, हम जब भी बात करते हैं कहते हैं जी हम तो कमज़ोर हैं, बंदा तो इंसान तो होता ही कमज़ोर है, गलतियां करता है। नहीं, वो कमज़ोर नहीं होता, वो दूसरी कुव्वत के अंदर बहुत बड़ा पहलवान होता है। तो हमें दूसरी कुव्वत में पहलवान नहीं बनना, हमें तकवा की कुव्वत में पहलवान बनना। तो ये अब तकवा बढ़ता कैसे है? तकवा जितना आप खुदा की इताअत करेंगे, जितना आप गुनाह नहीं करेंगे, आपका तकवा बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम गुनाह करते हैं ना तो हमारी दूसरा जो पहलवान है अंदर वो स्ट्रांग होता है। यानी अगर झूठ है उसकी आदत पड़ जाए, मतलब झूठ बोलता रहे तो उसकी जो आदत बन जाती है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। तो तकवा के हवाले से अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो گناہوں کو اگر ہم ترک کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمارا تقویٰ بڑھے گا. صحیح. تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں نا تقویٰ کے بارے میں تھوڑا سا تشریح دیں یا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ خدا کی ول پہ, خدا کی امر پہ جو ہے وہ تسلیم ہو جاؤ, خدا جو کہتا ہے اس کے اوپر تسلیم ہو جاؤ, اور جس چیز کے اس نے منع کیا اس کے نزدیک نہ جاؤ. یعنی جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ, اور جس چیز سے خدا نے کہا ہے کہ وہ نہ کرو اس سے دور ہو جاؤ, تو یہ تقویٰ ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ مثلا ہم تقویٰ, پھر یہاں پہ آگا کہتے ہیں کہ دو قسم کا ہے, ایک تقویٰ جو ہے وہ واجبات کا اور ایک تقویٰ مستحبات کا. یعنی جو کہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں. آپ کو جو اسٹرینتھ چاہیے اس کے اندر دو قسم کی اسٹرینتھ ہے, ایک اسٹرینتھ یہ کہ جو آبلیگیشنز ہیں آپ کی آپ اس کو پورا کریں, جو آپ کی واجبات ہیں اس کو آپ ادا کریں, اور جو مستحبات ہیں اس کو بھی ادا کریں. صحیح. تو یہاں پہ آگے نے تقویٰ کی جو ہے وہ دو قسمیں کی ہیں, یعنی اپنے سر کو تسلیم کرنا واجبات کے اوپر, اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہم سے مثلا ایک بھی جو واجب ہمارے پاس ہمارے اوپر ہے اس کو ہم نہ چھوڑیں, اور دوسرا یہ کہ جو مستحبات ہیں اس کے اندر بھی آپ کوشش کریں, جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ کریں. انہوں نے دو قسم کی ان طاقتوں کا ذکر کیا. کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان میں بھی ان کے اندر کم و پیشی ہوتی ہے. مثلا جب مصحبات کی بات آتی ہے, مکروحات کو ترک کرنے کی بات ہوتی ہے, ان کے اندر یہ قوت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, انہیں ساری ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے درس سن لیں گے, جب نماز فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو سوئیں گے, یہ ساری ساری رات شب بیداری کر لیں گے, ماتم کر لیں گے, امام حسین کی اذان کر لیں گے. مستحبات بڑا اسٹرانگ ہے ان کے اندر یہ والا تقویٰ, لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو سوئیں گے. میں نے کہا کہ یہ نہیں, ان دونوں تقووں کو آپ کو, ان دونوں قوتوں کو جو ہے آپ کے اندر ہونا چاہیے, یعنی واجبات کو بھی آپ ادا کریں اور مستحبات کو بھی. اور یہ نہ ہو کہ مثلا اگر یہ امبیلنس ہو جائے گی تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ واجبات کو ادا کر لیتے ہیں, یعنی ہر نماز پڑھیں گے, جو ان کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کریں گے, لیکن جب مستحبات کی باری آتی ہے تو اس کے اندر وہ آپ کو کم نظر آئیں گے. نمازیں ان کی پوری ہو رہی ہیں, روزے ان کے پورے ہو رہے ہیں, حج ان کے پورے ہو رہے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, لیکن جب نماز شب کی باری آتی تو سوئے ہوئے, جب قرآن پڑھنے کی باری آئی سوئے ہوئے, جب دعائیں پڑھنے کی باری آئی تو سوئے ہوئے. تو اس میں بھی امبیلنس ہو جاتا ہے, تو ہمیں ان دونوں کے اندر امبیلنس نہیں کرنا, واجبات کو بھی ادا کرنا ہے وہ بھی قوت رکھنی ہے, اور ساتھ میں مستحبات کو بھی ادا کرنے کی قوت رکھنی ہے. پھر باقی جو انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ جو پریسیڈنٹ ہے اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, پھر کچھ حدیث ہیں جو کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر نے اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل لیا, انہوں نے کہا ہے کہ سنا بہت زیادہ اچھے کام نہ کرو, بہت زیادہ ٹکا کے بڑے بڑے جو ہے وہ کام نہ کرو, بلکہ کیا کرو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. بڑے بڑے کام کرنے نہ سوچو بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے بڑے بڑے کام آپ کر بھی لوگے نا, وہ جو آپ کے گناہ ہیں اس کو نل کر دیں گے. یعنی اگر ایک بندہ ہے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, جس کو بھی آپ بڑا کام کہیں, بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, بہت زیادہ صدقہ دیتا ہے, بہت زیادہ مثلا خدا کی راہ میں اپنا ٹائم, یہ وہ بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے, اعمال صالح انجام دیتا ہے, لیکن جب گناہ کی بات آتی ہے تو وہ گناہ کرتا تھا. اب گناہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اعمال حسنہ کو ختم کر دیتے ہیں, تو پھر امپورٹنٹ کیا ہوا؟ امپورٹنٹ یہ ہوا کہ اعمال حسنہ ادا کیے, لیکن سادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں. گناہ نہیں کریں گے. تو جتنے بھی آپ نے اعمال حسنہ چھوٹے چھوٹے بھی اگر کیے ہیں اور وہ خدا قبول کر لے تو آپ سرخرو ہو جائیں گے. لیکن اگر بہت بڑے بڑے کام کر کے ان کو مثلا ڈسٹروئے کرتے رہے تو اس کے اندر سرخرو بندہ نہیں ہو سکتا. اب آگے جا کے بہت ساری نے حدیث جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ جو ابھی آپ کے لیے پریسیڈنٹ کیا یہ سمجھ میں آ جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک لقمہ بھی جو حرام کا نا اس کو جو ہے وہ ایک لقمہ حرام کا نہ کھانا, صحیح, ایک لقمہ بھی حرام کا نہ کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس زیادہ قیمتی ہے, بجائے اس کے کہ 2000 رکعت مثلا کسی نے نماز مصطفیٰ ادا کی ہو. یعنی اپنے آپ کو اگر اس نے ایک حرام لقمے سے بچا لیا تو خدا اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے, بجائے اس کے کہ کسی نے 2000 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مثلا ایک لقمہ حرام کھا لیا. اس کے نزدیک جو ویلیو, خدا کے نزدیک جو ویلیو ہے وہ یہ, اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک لقمہ حرام سے بچا لیا وہ بہتر ہے اس کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ نے 2000 رکعتوں کو جو ہے وہ مستحب نمازوں کو پڑھ لیا. دوسری امام, پھر دوبارہ امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک پیسہ مثلا ایک درہم جو کہ حرام کا ہو اس کو نہ لینا, خدا کے پاس 70 حجوں سے جو کہ ایکسیپٹ کیے ہوئے ہوں اس سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ نے ایک پیسہ تھا, ایک درہم تھا, ایک آنا یا آپ کیا اسے کہیں گے ایک ڈالر جو کہ مثلا آپ کا نہیں ہے اور آپ نے اسے رکھ لیا, یا کوئی آپ کو مثلا ایک ڈالر جو ہے اگر کسی کا حق ہے وہ آپ اسے رکھ لیتے ہیں, تو اگر آپ نے 70 حج بھی کیے ہوئے ہوں جو کہ ایکسیپٹ قبول حج تھے تو وہ گئے. یعنی اللہ میاں کے پاس جو میزان ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک حرام لقمہ, دوسری طرف 2000 رکعت نماز مستحب. تو خدا کے اس میزان کے اندر کون سی چیز زیادہ ویٹ رکھتی ہے, کون سی چیز زیادہ ویٹ رکھتی ہے؟ یہ جو آپ نے لقمہ حرام کا اپنے آپ کو بچایا وہ زیادہ ویٹی ہے, یہ کم ہے. اسی طرح سے ایک درہم, ایک ڈالر مثلا, ایک درہم حرام کا پیسہ اس کو آپ نے چھوڑ دیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھاری ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے 70 حج جا کے کیے جو کہ قبول ہوئے. یہ اب ہمارے اسکیل کے اندر ہو سکتا ہے, یہی آپ سے عرض کر رہے تھے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھتے اپنی نگاہ سے جب دیکھیں, ہمارے لیے بڑی چیز تو یہ ہوگی کہ 2000 مستحب نمازوں کو ادا کیا جائے, ہمارے لیے تو یہ بڑی چیز ہوگی. یا ہمارے لیے بڑی چیز ہوگی کہ مثلا 70 حج کیے جائیں جو کہ خدا قبول کر لے, ہمارے لیے وہ بڑی چیز ہوگی. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے خدا کے سامنے اتنی بھاری نہیں ہیں جتنی حتیٰ کہ انہوں نے ایک درہم اور ایک لقمے کی بات کی, وہ خدا کے نزدیک زیادہ ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی حدیث کو جو ہے وہ کہتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو مثلا کوشش کرو کہ اچھی آپ اعمال کو انجام دو, لیکن اگر آپ ایک اچھے عمل کو انجام نہیں دے سکتے تو حد عقل یہ کریں کہ آپ خدا کی کوئی نافرمانی نہ کریں. کیونکہ اگر کوئی انسان ایک ایسی بنیاد رکھتا ہے ایک ساختمان کی, ایک بلڈنگ کی, کہ مثلا اس نے بنیاد رکھی اور بنیاد جو ہے وہ بنیاد کو رکھ کے اس کو اس نے توڑا نہیں بلکہ بنیاد کو رکھا اور اس کو سیف گارڈ کیا, صحیح, تو حتیٰ کہ اگر اس کی کنسٹرکشن وہ سلو ہو رہی ہے اسی بنیاد کی جو اس نے سپوائل نہیں کی, حتیٰ کہ کنسٹرکشن سلو بھی ہو رہی ہے تو بلڈنگ ضرور کھڑی ہو جائے گی, صحیح. لیکن جو شخص مثلا بنیاد کو ڈال دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بنیاد کا توڑتا بھی رہتا ہے تو کبھی بھی وہ بلڈنگ بننے والی نہیں. مثلا آپ نے فاؤنڈیشن رکھی ہے, فاؤنڈیشن ہی کو جو ہے وہ तोड़े, फाउंडेशन को तोड़े, उसके ऊपर जो है वो बड़ी तेजी से बिल्डिंग बना रहे हैं। आप बिल्डिंग जितनी मर्जी तेजी से बना लेंगे, फाउंडेशन जो आप तोड़ी जा रहे हैं तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो अगर एक फाउंडेशन है जिसको आपने बनाया और उसको आप प्रोटेक्ट किया है, और अगर आपकी कंस्ट्रक्शन स्लोली 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 एक एक ईंट करके एक एक पत्थर रख के भी हो रही है, तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। आसान आसनात के साथ साथ अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो ये ऐसे है कि आप अपनी बुनियाद का जो है वो तोड़ रहे हैं। उन्होंने यही कहा ना कि मसलन जो उस जो कॉन्टेक्स्ट दिया इमाम ने वो ये था कि आपको कोशिश करनी चाहिए अच्छे काम करें, लेकिन अगर आप अच्छे काम इतने ज्यादा नहीं कर सकते तो खुदा की नाफरमानी ना करें, क्योंकि खुदा की नाफरमानी करना क्या है कि वही जो बुनियाद आपने अच्छे कामों की रखी या अच्छे काम करके जो है वो एक बुनियाद एक घर बनाने की कोशिश करेगी उसको आप तोड़ें। तो अगर आप उसी फाउंडेशन को जो थोड़े भी काम किए हैं लेकिन अगर आप गुनाह ना करें और उसी फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करें, और बिलाखिर अगर आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन हो रही है तो बिलाखिर किसी ना किसी टाइम पे वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। सही। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, ये आपने सुनी हुई है कि रसूल जब मेराज से वापस आए तो उस हवाले से है कि एक बंदे ने, रसूल ने कहा कि भाई जो बंदा भी सुबहान अल्लाह कहता है तो उसने मसलन एक जन्नत के अंदर दरख्त बना लिया। इसी तरह से एक मेराज के हवाले से भी हदीस है। तो ये हदीस है कि भाई रसूल ने कहा कि जो बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो उसने जन्नत में एक दरख्त बना लिया। तो जब एक सुना तो कुरैश में से एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा कि अगर यही बात है तो मेरे तो बहुत ज्यादा दरख्त हैं जन्नत के अंदर। तो रसूल ने कहा कि ठीक है वो आपके बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप यहां से आग को ना भेजें उन दरख्तों को जलाने के। मसलन हमने अगर बहुत ज्यादा सुहाना 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 कर भी लिया, वहां पे बड़े दरख्त लगा लिए, गार्डनिंग कर ली, और यहां से उन्हीं दरख्तों को जो है वो हम आग लगा के जो है वो खराब करें, तो उसका कोई फायदा नहीं बनता। या आप मसलन यहीं पे यही इसी दुनिया की एग्जांपल ले लें कि आपका गार्डन है और आप बड़े बीज बोते हैं उसमें, बहुत ज्यादा वहां पे जाके बीज लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उन पौधों को जो है वो बड़ा करते हैं, और साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि वो पौधे बड़े होते हैं उनको जो है जड़ों से निकाल के फेंक के जाए, आपकी फसल कहाँ लगेगी, आपकी मेहनत किस तरह से फल लेकर आएगी, वो तो फल नहीं लेकर आएगी। सही। तो वो जो बंदे ने मसलन ये कि ये जब सुन लिया कि जी हाँ दरख्त लगते हैं सुबहान अल्लाह कह के, तो वो बड़ा खुश हो गया, लेकिन आप खुशी के साथ साथ जो गुनाह है वो हमारे अमाले हसना को खा जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया वो इसलिए किया कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप गुनाह ना करें, गुड डीड भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप गुनाह ना करें। और अगर छोटी छोटी भी डीड है, छोटा छोटा भी अमल है, अगर खुदा ने उसको कबूल कर लिया तो वो छोटा नहीं रहता। समझ रहे हैं आप बात? यानी अगर खुदा ने कोई हमारा एक छोटा सा अमल भी कबूल कर लिया तो वो बहुत बड़ा अमल हो जाएगा। मसलन आप किसी एक बुजुर्ग को, एक मसलन हमारे लिए बुजुर्ग मसलन इमाम खामनई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सलामत रखे, दुश्मनों की शर से महफूज रखे और उनका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे ताकि इमाम सलाम आ जाए। अब आप उनके पास जाते हैं और उनको मसलन कोई भी चीज, अपनी एक तस्बीह जो आपके पास है पुरानी सी तस्बीह, आप आगाज को कहते हैं आगा ये तस्बीह, अब उस तस्बीह की खुद कोई कीमत नहीं है। सही। कोई कीमत नहीं उस तस्बीह की, लेकिन आगा को जब आप देते हैं और आगा कबूल कर लेते हैं तो वो तस्बीह बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि उन्होंने उसको कबूल कर लिया। अब आप यहां से $1 million लेके जाते हैं आगा के लिए और कहते हैं आगा ये ले लें, वो कहते हैं मुझे नहीं कबूल, तो कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, वो तस्बीह या वो $1 million? तस्बीह हुई। तो जब खुदा हमारे किसी भी अमल को कबूल कर लेता है वो छोटा अमल नहीं रहता, वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज है वो। तो अगर खुदा ने उस अमल को कबूल कर लिया है तो अब आप उसी अमल को जाया करें, यानी अगर वो हमारी पूरी जिंदगी में से एक छोटी सी चीज भी कबूल कर ले, कोई भी चीज, छोटी सी भी चीज कबूल कर ले, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर हमने गुनाह किए तो उसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, फायदा नहीं होगा हमें। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इंसान जो है वो क्या गुनाह ना करे। इसी तरह से इमामी के हवाले से है कि हसद जो है वो ईमान को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब जो शख्स हसूदगी करता है, जेलसी करता है, गुनाह कर रहा है, अब उसकी ये जो जेलसी है उसके ईमान को खाई जा रही है। वो जितना मर्जी बेशक अपने ईमान को बढ़ाते जाए लेकिन साथ साथ उसका ईमान खत्म हो रहा है। एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रोजे माशे में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनकी के आमाल हसना जो है वो यानी पहाड़ तहामा पहाड़, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ मुसलमान अरबों के उतने बड़े मुसलमान उनके आमाल होंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की तरह उनके आमाल जो है उनके नामे अमाल के अंदर पहाड़ों की तरह अच्छे अच्छे अमाल होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनको जहन्नम में जो है वो डाल दिया जाएगा। मसलन साहब आ रहे हैं वो ट्रेलर्स के ट्रेलर्स उनके बड़े बड़े आ रहे हैं अमाल हसना के, सही रोजे माशर में एक लंबी कतार लगी हुई है अमाल हसना की, उठा के लेके आ रहे हैं ट्रेलर्स, और वही आगा साहब जो है वो उनको खुदा जो है वो जहन्नम में डाल रहे हैं। तो जब ये कहा रसूल ने तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह ये लोग नमाज नहीं पढ़ते होते थे, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। तो रसूल ने कहा कि हाँ पढ़ते थे, रोजा रखते थे, अपनी जो है वो रात जो है वो इबादत में भी गुजारते थे, लेकिन जब भी उन्हें कोई मौका मिलता था जिस चीज से उनको मजा आता था तो उसको वो राइट अवे जो है वो कर देते थे विदाउट थिंकिंग वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग, ये सोचे बगैर कि ये चीज सही है या बुरी है। मसलन उन्हें जब भी कोई चीज ऐसी लगती थी, आपको इंग्लिश में सुना देते हैं, उर्दू में शायद आप तर्जुमा, बट वन एवर दे चांस्ड अपॉन समथिंग विच गेव देम प्लेजर दे यूज्ड टू रश टू इट विदाउट थिंकिंग वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग, यानी उनकी जो शहावत के हवाले से मुस्लिम ने शायद हो सकता है गीबत में बड़ा मजा आता हो, जैसे गीबत का मौका देखा फौरन कि भाई ये सही हो सकता है गीबत है या नहीं है, वो फौरन जाके वो गीबत कर, या मसलन एक कोई अच्छी चीज है उन्हें पसंद है, ये कोई नहीं देखा कि ये चीज हलाल है या हराम है, अच्छी है या बुरी है, फौरन जाके खा ली। अमान तो आगे उन्होंने मसलन नमाजें भी पढ़ी, रसूल कहते हैं कि नमाजें भी पढ़ी उन्होंने, रोजे भी रखे उन्होंने, रातों को जागे भी और इबादत भी, माज़द जो भी सुन रहा है देख रहा है इंशाल्लाह के ये चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। हदीस दोबारा पढ़ देते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे उन्होंने देखा कि एक बंदा है वो सिजदे में है और वो गए अपने काम काज किए, जब वापस आए तो वो बंदा फिर भी सिजदे में था, तो उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर मेरे पास ताकत होती तो ये जो चाहता मैं इसको दे देता, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको वही की, उन्होंने कहा कि हजरत मूसा से कि अगर ये बंदा उस हद तक सिजदा करता रहे कि इसकी जो सर है वो इसके तन से जुदा हो जाए तो फिर भी मैं इसके अमाल को कबूल नहीं करूंगा जब तक ये उन चीजों को करे जो मुझे पसंद है और उन चीजों को छोड़ दे जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो जो अमाल है जो अमाल हसना इबादत हैं उनको गुनाह जो है वो कबूल होने से रोक देते हैं। क्वेश्चन मैं नहीं सुन देख सक रहा है, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये तकरीबन आप कह लें कि हमने 20% भी इस चैप्टर को नहीं किया। तो अब मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये होगी, अभी हम क्योंकि ये पहला दर्स चल रहा है तो इसको फिर ज़ाहिर है कि आगे भी चलाना है, और 50 चैप्टर हैं आगा के किताब के। और अगर हम ये अभी पहले चैप्टर की पहली एक चीज है तकवा क्या है, और उसको भी हम अगर ना 1.5 घंटे के अंदर कर सके तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए दरख्वास्त ये है कि आप जो है ना वो कम से कम कुछ सफ़े जो है ना वो पढ़ के आए, और उनको मैं 15-20 मिनट के अंदर मुख्तसर जो है वो एक्सप्लेन किया करेंगे, और आप फिर सवाल पूछ लें अगर आपके जहनों के अंदर सवाल उठते हैं तो हम उसके बाद जो है वो आगे बढ़ें। मेन जो चीज़ आपके अंदर आगा की ये खूबी है इस किताब की कि वो एक ही पॉइंट है, लेकिन उसी पॉइंट को उन्होंने इतनी ज़्यादा अहादीस ला कर एक्सप्लेन किया है, बताया है, ताकि कोई ना कोई एक ना एक हदीस तो बंदे को याद रहेगी और उसकी वजह से वो अपने आप को उस पॉइंट के ऊपर जो है अमल में ले आएगा। तो ये पूरा के पूरा जो अभी तक हम बात करते रहे वो यही है कि गुनाहों से बचें। गुनाहों से बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आप गुड डीड्स को अंजाम दें, और आपके जो गुनाह हैं वो गुड डीड्स अगर अंजाम भी देंगे काफ़ी तो उसको ले बैठेंगे। अगर सवाल क्या था,
जी, वो कह रहे कि क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है कि किसी वक्त जरूरत के वक्त झूठ बोल सकता है आदमी?
और सब जरूरत के वक्त झूठ बोलना, अगर आप मसलन उस चीज के बारे में पूछ रहे हैं जो कि फिक्र के अंदर है या दूसरी सिचुएशंस के हवाले से कि झूठ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, अगर आप उस सिचुएशन के अंदर आते हैं तो फिर ये सवाल पूछ लें और उस सिचुएशन के हवाले से आपको जवाब दे देंगे। क्योंकि दर हकीकत में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कि आप कहें कि खुदा की एक हराम की हुई चीज़ हलाल हो जाती है। दर हकीकत में अगर कहीं पर है कि भाई झूठ आप बोल सकते हैं तो वो झूठ नहीं होता, उसको आप झूठ नहीं कह सकते। ये बात नहीं हो सकती कि एक चीज़ है मसलन वो खुदा की हलाल की हुई है लेकिन सरकमस्टांसेस से वो हलाल की हुई हराम बन जाए, या हराम की हुई हराम जो है वो हलाल बन जाए, ऐसा नहीं होता। सर्कमस्टांसिस के हवाले से अगर आप देखना चाहें तो उस हर एक सर्कमस्टांस का जो है वो डिफरेंट जवाब है। तो अगर वो आप सर्कमस्टांस बताएं तो उस हवाले से आपको बताया जा सकता है। कहने का मकसद ये कि कोई सिचुएशन नहीं है जिसके अंदर आप कह लें कि झूठ बोलना जो है वो अलाउड है, बशर्ते इनके कि अगर कोई आप ऐसा कोई नादर चीज़ हमें बता सकते हैं तो फिर हम उसके हवाले से जो है वो आपको जवाब दे देंगे। दो भाई में सुलह सवाए झूठ की अगर और नहीं हम कर सकते वो एक अलहदा बात है। यानी सुलह कराने की बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको बहुत
अगर
सारी
दो भाइयों में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप तीसरे बंदे आप जाके कहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं,
हाँ उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आगे साहब उनको बिठा के उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है वो रफ करें। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है
तो
उन
मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई मुझे एक्स वाई जेड साथ जो है ना अच्छा नहीं समझते, उसमें ये बुराई है, समझ नहीं। मैं जाके कहता कि नहीं यार वो साहब एक ऑफिसर साहब रहते हैं कि वो एक्स वाई जेड साहब आपके बारे में ये बातें कर रहे थे कि आप ये भी कर रहे हैं अच्छे, सारे वो तारीफें करते हैं जिनको मैं ये समझ रहा था कि वो बुराई देते हैं।
नहीं आप सब देखिए वो वही मैं उसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन चीज ये है, बेहतरीन चीज ये है कि भाई वो जो दो भाई हमारे आपस में उनको मुश्किल है, अगर आप समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप उनको बिठा के उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बिठा के जो है वो क्लियर कर लें। ये जजमेंट हम आपको अगर कह लें कि भाई हम अभी इस वक्त जो है झूठ बोल सकते इस वक्त नहीं बोल सकते, ये नहीं सही। ये इसलिए मैं ये इसके बारे में जो है वो ज्यादा आपको पहले भी नहीं बताया क्योंकि पहले भी आप ये सवाल जो है आप में से कुछ लोग पूछ चुके हैं। यानी ये बात कि भाई आप अपनी हराम खा सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप हराम खा सकते हैं? हाँ वो सिचुएशन के मसलन अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो रही है और आप समझते हैं कि जिंदगी खत्म हो रही है आप हराम खा सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन कहाँ पे आएगी? और अगर आएगी वो सिचुएशन तो आपको कैसे पता है कि अगर आप अभी नेक्स्ट लुकमा नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे? तो अगर अपने आप को ये हम इजाजत देने लगे तो बहुत सारी चीजों में आप स्लिप आउट होंगे। गीबत के मामले में भी ऐसी है, झूठ के मामले में भी ऐसी है, और हराम खाने के मामले में भी ऐसी। اسے آخری جو حدیث ہے اس کو آپ سن لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا وقت ہو جائے گا تو انشاءاللہ نماز پڑھیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کوئی بھی بندہ میرا جو بندہ ہے وہ میرے نزدیک نہیں آ سکتا بغیر اس کے کہ وہ تین چیزوں کو جو ہے وہ کرے جو کہ مجھے پسند ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا اللہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام